بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يقين ركھو کہ اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، نہ زمین میں نہ آسمان میں. إن الله كان عليكم رقيبا، يقين ركھو کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہے ہیں. وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتے ہیں. میرے محترم دوستو اور بزرگو، ہماری امت کی مقدس مائیں اور بہنیں، اللہ سبحانہ و تعالی بہت بڑے، اللہ کے خزانے بہت زیادہ. اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، فرشتوں سے آدم کو سجدہ کروایا اور آدم کو زمین پہ اپنا خلیفہ بنایا. اللہ نے آدم کے لیے ایک خوبصورت بیوی حوا کو پیدا فرمایا، اور آدم اور حوا سے اللہ نے زمین پر کہاں کہاں انسانوں کی نسلیں پھیلا دی. روزانہ کئی لاکھ بچے، کئی لاکھ انسان دنیا میں پیدا ہوتے ہیں. ہر ایک کو اللہ کے خزانے سے خوبصورت آنکھیں دی جاتی ہیں. اللہ پاک کروڑوں عقل مندوں کو عقل دینے والے، کروڑوں خوبصورت لوگوں کو خوبصورتی دینے والے، اور کروڑوں ماؤں کو رحم دلی دینے والے. اللہ کے خزانے سے خوبصورت آنکھیں سب کو دی جاتی ہیں. آنکھوں سے دیکھنا ایک نعمت ہے، رنگوں کو دیکھنا ایک نعمت ہے، آنکھوں کا کھولنا بند کرنا، پلک جھپکنا الگ نعمت ہے، اور خوشی اور غم کا اظہار کرنا اور رونے کی توفیق ہونا یہ الگ نعمت ہے. والدین کو دیکھنا آنکھوں کی عبادت، بیت اللہ کو دیکھنا آنکھوں کی عبادت، قرآن شریف کو دیکھنا آنکھوں کی عبادت. گھر میں شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو پیار سے دیکھتے ہیں، اللہ پاک دونوں کو نظر رحمت سے دیکھتے ہیں. لیکن آنکھوں کو حفاظت کے لیے بتایا گیا کہ نامحرم کو نہیں دیکھنا، نامحرموں کو نہیں دیکھنا. حضرت شیخ الاسلام نے فرمایا کہ یہ بدنظری کا عمل نفس کی اصلاح کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور انسان کے باطن کے لیے اتنا تباہ کن ہے کہ دوسرے گناہوں سے بہت آگے بڑھا ہوا ہے. جب تک اس کی اصلاح نہ ہو اور نظر قابو میں نہ آئے، جب تک باطن اور دل کی اصلاح کا تصور تقریباً محال ہے. آگے فرمایا کہ یہ کام بڑا مشکل نظر آتا ہے، ہر طرف بے پردگی ہے، ایسے میں نگاہیں کیسے بچائے؟ لیکن اگر ایمان کی حلاوت منظور ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق اور محبت چاہیے اور باطن کی صفائی، تزکیہ اور طہارت منظور ہے، تو یہ کڑوا گھونٹ پینا ہی پڑے گا، یہ کڑوا گھونٹ پینا ہی پڑے گا. آج کی دنیا میں فتنے نامحرموں کو دیکھنے کے ٹی وی پر ہو، یا تصویر میں ہو، یا آمنے سامنے ہو، ہر طرف بے حیائی کے مناظر سر اٹھائے کھڑے ہیں. قرآن میں حل بتایا گیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچی رکھیں. دنیاوی خوبصورتی کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورتی دی گئی یوسف علیہ السلام کو، اور ان کا کیا حال ہوا کہ بازار میں چند سکوں کے عوض بیچ دیے گئے. علماء فرماتے ہیں کہ دنیاوی خوبصورتی کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، لیکن جو خوبصورتی اللہ کے خزانے سے آخرت میں ملے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی طرح خوبصورتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، ये आखरत में दिए जाएंगे, ये असल कामयाबी है। दुनिया में अगर किसी की शक्ल मामूली आम सी भी है, आखरत में इतना खूबसूरत कर दिया जाएगा कि 1000 मील के फासले से भी देखो तो चेहरा नूरानी नजर आएगा। असल चीज आखरत की खूबसूरती है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, इन्ना समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अनहु मसूला। यकीन रखो कि कान, आंख और दिल सब के बारे में तुमसे सवाल होगा। यालम खाइनतल आयुनी, यालम खाइनतल आयुनी वमा तुख्फि सुदूर। अल्लाह पाक आंखों की चोरी को भी जानते हैं और उन बातों को भी जिनको सीनों ने छुपा रखा है। इन रब्बका लबिल मिरसाद, बेशक तुम्हारा रब सबको नजर में रखे हुए है। हदीस शरीफ में आया, मिशकात की रवायत है, लअनल्लाहु नाज़िरा वल मनज़ूरा इलैह। अल्लाह की लानत हो बदनजरी करने वाले पर और खुद को दिखाने वाले पर भी। बुखारी शरीफ में आया, ज़िनल आइन नवर, बदनजरी आंखों का जिना है। कंजुल उम्माल में हदीस कुदसी है, इन नवरा सहमुम मिन सिहाम इबलीस मस्मूमुन। बेशक बदनजरी, बुरी नजर डालना, यानी नामहरम को देखना, शैतान के तीरों में से एक जहरीला तीर है। जो अल्लाह के खौफ से बदनजरी से रुक गया, अल्लाह उसको ऐसा ईमान अता फरमाएंगे जिसकी हलावत और मिठास वो अपने दिल में महसूस करेगा। उलमा फरमाते हैं कि हलावत ईमान मिल गई, बहुत बड़ी नेमत है। ईमान पर खात्मे और हुस्ने खात्मा की निशानी है ये। आज बदकिस्मती से ये दौलत बाजारों में, सड़कों में जाया हो रही है, बदनजरी की वजह से, नामहरमों को देखने की वजह से। अंबिया, सुल्हा, मुत्तकी, नेक लोग हमेशा नजरें नीची करके चलते हैं, हमेशा नजरें नीची करके चलते हैं। जगह जगह बेहयाई के मनाजिर हैं और शैतान टीवी, मौसीकी के आलात, टीवी पर नामहरम को देखना, ये तो यानी किसी तरह भी दुरुस्त बात नहीं है। रहमत के फरिश्ते उस घर में नहीं आते जिसमें तस्वीर हो या कुत्ता हो। अब तस्वीरों का फितना, आदमी मैगजीन खोले, अखबार खोले, अपना जंक मेल देख रहा है, अत्ता के सामान खरीदने गया तो सुपरमार्केट में चेकआउट करके निकला, वहां पर कैसी कैसी तस्वीरें। तो वह अपने भी, घर वालों की भी, बच्चों की भी निगाहों की हिफाजत करें। क्या नुकसान होता है इससे? नुकसान मालूम करना हो, बच्चे बच्चियों, नामहरमों का इख्तलात, तस्वीरें, वीडियो, टीवी, म्यूजिक, इससे क्या होता है? तो गैर मुस्लिम जो माशरे हैं उनके घरों की हालत और वहां पर जो जराइम हो जाते हैं उसको देखिए। दीन इबादत के रास्ते से आता है मगर माशरत की लाइन से चला जाता है। आया कहाँ से था? नमाज पढ़ने से। और गया कहाँ से? माशरत की लाइन से दीन खो जाता। जन्नत को नागवारियों से घेर दिया गया, जहन्नम को ख्वाहिशात से घेर दिया गया। तकवा कहते हैं फूंक फूंक कर चलना। जंगल है, दोनों तरफ कांटे हैं, कपड़े बचाकर चलना वरना कांटे लग जाएंगे। लाइक वॉकिंग ऑन शेल्स, शैतान चारों तरफ से आके हमला करेगा, हर तरफ से बचते बचाते चलना। बदनजरी के एक गुनाह ने लाखों लोगों को अल्लाह से महरूम कर दिया। मोमिन गुनाह को ऐसा समझता है जैसे पहाड़ सर पर आ गया हो, अल्लाह बचाए। और ईमान ना हो तो गुनाह को ऐसा समझे जैसे कोई मक्खी थी, उड़ा दी, कोई असर ही नहीं हुआ। इल्म कहते हैं अल्लाह के एहसानात को याद करना और ये जानना कि किन बातों से अल्लाह खुश होते हैं और किन बातों से अल्लाह नाराज होते हैं। इस चीज को कहते हैं इल्म दीन। अपनी बच्चियों को सूरह नूर और सूरह अहज़ाब की तफसीर पढ़ाइए। इंसान के दिल पर मुसीबतें उसकी निगाहों की वजह से आती हैं। जो देखेंगे, जो बोलेंगे, जो सुनेंगे, जो सोचेंगे, अब दिल पर उसका असर होगा। जिसकी आंख काबू में नहीं उसका दिल काबू में नहीं। बड़े बड़े फितने नजर पड़ने की वजह से शुरू होते हैं। जो गैर शादीशुदा नौजवान है उनके लिए तो बहुत बड़ा मसला है, लेकिन जो शादीशुदा हैं उनके लिए भी कम नहीं है। किसी के घर में लड़ाई हो गई, फर्ज करो मियाँ साहब बाहर चले गए गुस्से में, अब बाहर जो देखा तो सैकड़ों खूबसूरत मुस्कुराते हुए चेहरे, हर एक थैंक यू कह रहा है। अब जब वापस आए तो अब जो है वो हर एक बाहर के लोगों को घर वालों से कंपेयर कर रहे हैं, घर का सुकून इत्मीनान सब खत्म हो गया, बदनजरी के एक गुनाह से सारे मसले शुरू हो गए। इसलिए नेक लोग हमेशा नजरें नीची करके चलते हैं। उम्मत में नेक मोमिनात हमारी बहनें मस्तूरात, उनके कितने फजाइल बयान किए गए, अल्लाह पाक कितने खुश होते हैं। माओं के कदमों तले जन्नत बताई गई। बाहर के मशक्क़त वाले काम, बाहर के मुश्किल काम, वो औरतों में माफ है और दुनिया के मामले में उनको आसानी दे दी गई और आखरत के मामले में बराबरी दे दी गई। दुनिया के मामले में आसानी दे दी गई और आखरत के मामले में बराबर वो दे दी गई। शौहर के बाहर के नेक कामों का अजर उनको घर बैठे मिल रहा है और अपना नेक अमल उनके लिए बोनस है। औरतों का खर्च और नफका जिंदगी भर मर्दों के जिम्मे है, और अपना जाती माल अगर हो तो दूसरे पर खर्च करना कोई जरूरी नहीं। किसी बहन की औरत के पास अपने जो माल है उसमें से उनको खर्च करने की जरूरत नहीं है, इल्ला ये कि मर्द मौजूद ही ना हो, और सिर्फ ज़कात सदका देना है, और उनका खर्च मर्दों के जिम्मे है। और नेकी के रास्ते में कितनी बहनें आलिमात हुई, मुफ्तिया, मुहद्दिसात, फकीहा, दाइया। नेक औरत की नेकी 70 औलिया की नेकी के बराबर, नेक औरत की नेकी 70 बुजुर्गों की नेकी के बराबर बताई गई। और जन्नत में नेक बहनें अपने मर्दों से पहले दाखिल हो जाएंगी और जन्नत की हूर की सरदार हो जाएंगी, और हूरों से 70,000 गुना ज्यादा उनको खूबसूरत कर दिया जाएगा और मर्द बाद में आएंगे। दुनिया में बच्चों की खिदमत का सवाब ऐसा जैसा अल्लाह के रास्ते में जाना, और बच्चे को दूध पिलाना हर घूंट पे इतना सवाब जैसे एक आदमी को जिंदा करने का सवाब, एक आदमी को जिंदा करने का सवाब हर घूंट पे इतना सवाब। दो बेटियों की परवरिश पर जन्नत का वादा, और औरतों की ऐसी हिफाजत की गई कि गैर औरत को बुरी ख्वाहिश से देखना उसको गुनाह बताया गया। गैर मुस्लिम खवातीन को ये बातें समझ में आ जाएं तो सारे लोग मुसलमान हो जाएं। अल्लाह पाक ने खवातीन की इतनी तारीफ फरमाई, सूरह नूर में फरमाया मुहसनातिल गाफिलात, क्या तारीफ फरमाई, पाक दामन भोली भाली मुसलमान औरतें, चेस्ट नाइस बिलीविंग वेमेन, अगर उन पर कोई तोहमत लगाए तो उसको 80 कोड़े मारो और जिंदगी भर उसकी शहादत कबूल नहीं करो, ऐसा मर्दूद हो गया। इस्लाम में बेटी का क्या मुकाम है कि अगर आदमी के पास सिर्फ एक बच्चे को तालीम दिलाने के पैसे हो और घर में बेटा बेटी दोनों हो तो अदब बताया गया कि पहले बेटी को तालीम दिलाओ, इल्मे दीन, इल्मे दीन बेटी को दिलाओ, उस पर खर्च करो, और घर में चीज लाओ तो पहले बेटी को दो, बेटी का मुकाम बुलंद कर दिया। हकीमुल उम्मत फरमाते थे अपने जमाने की मस्तूरात के बारे में कि अगर 100 औरतें हों तो शायद ही कोई औरत होगी कि जिसके दिल में गैर मर्द का वसवसा कभी आया होगा। अल्लाह पाक हमारे जमाने की तमाम बहनों और उम्मत में ऐसे ही कायम फरमाते। सहाबियात ने एक मर्तबा उनको ख्वाहिश हुई कि देखिए कुरान में हमेशा मर्दों का जिक्र आता है जगह जगह, हमारा जिक्र हमसे बराह रास्त डायरेक्ट कोई अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, तो उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की। अल्लाह पाक ऐसी मोहब्बत फरमाते हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए और आयतें नाजिल हुई सूरह अहज़ाब में जिसमें मर्दों के साथ साथ औरतों की खसूसियात गिन गिन करके अल्लाह ने काउंट करके 10 खसूसियात बताई साइड बाई साइड। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما। बेशक फरमा बरदार मर्द हों या फरमा बरदार औरतें, मोमिन मर्द हों या मोमिन औरतें, इबादत गुजार मर्द हों या इबादत गुजार औरतें, सच्चे मर्द हों या सच्ची औरतें, सब्र करने वाले मर्द हों या सब्र करने वाली औरतें, دل سے جھکنے والے مرد ہوں یا دل سے جھکنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد ہوں یا صدقہ کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد ہوں یا روزے رکھنے والی عورتیں، اپنے شرم کی جگہوں کی حفاظت کرنے والے مرد ہوں یا عورتیں، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد ہوں یا عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور شاندار اجر تیار کر رکھا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ 10 گولڈ رنگ ہیں، یہ 10 سونے کی انگوٹھیاں ہیں مردوں اور عورتوں کے لیے، ان کو پہن لیجئے، یہ خصوصیات لے آئیے تو اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اب اتنے فضائل کے بعد کچھ احکام اور مسائل بھی بیان کیے جاتے ہیں عورتوں کی حفاظت کے لیے، اور اس میں سب سے اہم اور قیمتی چیز حجاب ہے۔ اب حجاب کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں شیطان اور نفس آ جاتے ہیں اور ایکسکیوز اور لیزینس لے کر آ جاتے ہیں اور مس کنسیپشن۔ کم عمر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو ہماری عمر ہی نہیں حجاب کرنے کی، اور بڑی عمر کے سمجھے کہ اب تو شادی وغیرہ ہو گئی، اب کیا حجاب کرنا۔ استغفر اللہ، جہاں پر بچے بچیاں ایک ساتھ پڑھتے ہیں کو ایجوکیشن میں، اب کوئی سمجھ لے کہ تو ہمارے بھائی بہن ہیں سارے ساتھ میں بیٹھے ہوئے۔ جہاں پر جوائنٹ فیملی ہو، کزنز ہیں، اب وہ سمجھے کہ یہ تو ہمارے انکل کے بچے ہیں، تو انہوں نے تو ہمیں بچپن میں دیکھا تھا جب ہم چھوٹے سے بیبی تھے، تو اب ان سے کیا پردہ۔ یعنی مس کنسیپشن ہر جگہ۔ انگریزی میں انکل یا آنٹی کہنے سے پردے کے مسئلے سمجھ میں نہیں آتے، کون سا انکل کون سی آنٹی۔ لڑکی کے لیے ماموں اور چچا تو محرم ہیں، مگر خالو اور پھوپھا غیر محرم، اور لڑکے کے لیے خالہ اور پھوپھی تو محرم ہیں مگر چچی اور مامانی یہ تو غیر محرم، اور کزن تو سارے ہی غیر محرم، کزن سارے غیر محرم۔ تو پردے کے معاملے میں مس کنسیپشن بہت ہے، اس کو سیکھنا چاہیے۔ پردے کی کتاب اور مضامین پڑھنے چاہیے، سورہ نور اور سورہ احزاب کی تفسیر پڑھنی چاہیے۔ آج کل حال یہ ہے، بازار سے گوشت مچھلی دودھ خرید کر لانا ہو تو اس کو تھیلی میں چھپا کر برتن میں رکھ کر لائیں گے کہ کوئی چیل کوا بلی نہ لے جائے، لیکن وہی آدمی اپنے خاندان کے بچیوں کو باہر لے جائے تو بے پردہ لے کر جا رہا ہے، اونڈے بدماش پریشان باہر، اور ان کا خیال نہیں۔ جو چیز نوٹوں کو چھپا کر پرس کے اندر رکھتا ہے لیکن گھر والوں کو نہیں چھپاتا، یہ مسئلہ ہے آج کا۔ اجنبی مرد موقع پرست ہوتے ہیں، بڑے مشائخ کیا کہنا ہے جو پوری زندگی کے دنیا بھر کے مسائل اور تجربات دیکھ کر فرماتے ہیں کہ دیکھو اجنبی مرد یہ موقع پرست ہوتے ہیں، اور جرائم جو ہیں بہت زیادہ ہو گئے ہیں آج کل، اور شیطان کا لشکر ہر وقت باہر ہے، کوئی بے پردہ نکلا شیطان پیچھے لگ جاتا، اور جب کوئی معاملہ مسئلہ پیش آ جائے اس معاملے میں تو اتنا نازک مسئلہ ہوتا ہے کہ بچے بچیاں اپنے والدین کو کبھی نہیں بتا سکتے، اور گھر والے ایک دوسرے کو زندگی بھر نہیں بتا سکتے۔ زندگی بھر کا جو ہے وہ ٹینشن، ڈپریشن، پریشانی، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آخرت کی دوڑ سے غافل ہو گئے، مایوس ہو کے کہیں بیٹھ کر رو رہے ہیں، اور شیطان جیت گیا، وہ میں نے بہکا کے ان کو بٹھا دیا۔ اور اس کا حل کیا ہے؟ توبہ کرو، تعلق میں اللہ واپس آؤ، کوئی دین کا کام شروع کرو۔ غفلت، نادانی اور جہالت۔ اچھا بلا حاجی ہزاروں ڈالر خرچ کر کے، اب کرایہ بھی ڈبل ہو گئے، کعبہ شریف کے سامنے بیٹھا ہے، اتنی مشقت سے گیا ہے، اور اچانک اس کی جیب میں باجا بجنا شروع ہو جاتا ہے، وہ بےچارہ پریشان ہو جاتا ہے، معلوم ہی نہیں کہ اس باجے کو میں کیسے روکوں۔ پہلے زمانے میں کعبہ شریف کا دروازہ کھلتا تھا تو سارے حاجی اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے تھے، یہ موقع ہے دعا کا۔ اب کعبہ شریف کا دروازہ کھلے، سارے اپنے فون لے کے وہاں پر موبائل سے ویڈیو بنانے بیٹھے تھے، اس کام کے لیے آئے تھے، یہ اللہ کا دربار ہے۔ کعبہ شریف میں جہاں نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر، ایک تسبیح کا ثواب 1 لاکھ کے برابر، اتنی بابرکت جگہ ہے، دو خواتین بے پردہ آ گئیں اور ایک مرد سے، غیر محرم مرد سے انہوں نے کہا کہ لو جی ہمارا فوٹو کھینچ دو۔ پکنک کی جگہ بنا لیا لوگوں نے، اللہ معاف فرمائے۔ بادشاہ کے دربار میں بادشاہ سے غافل، اور جب دین آتا ہے، حکیم الامت فرماتے ہیں کہ تم دین پر قائم رہو، اللہ پاک ساری قوموں کو تسخیر کر دیں گے۔ तो किस्सा यहाँ का है अमेरिका का कि एक गैर मुस्लिम खातून बड़ी उम्र की आई और उनको पड़ोसी से बात करनी थी, पड़ोसी मुसलमान था। तो गैर मुस्लिम खातून ने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया और कहा कि मुझे मालूम है कि मैं आपको नहीं देख सकती, आई एम नॉट सपोज टू लुक एट यू, लेकिन मुझे आपसे कोई बात करनी। तो जब हम अपनी जिंदगी में दीन लाएंगे तो अल्लाह पाक गैरों को भी दीन का अदब सिखा देंगे। वो आकर मसल्ले बिछाएंगे आपके लिए कि ये किबला है, ये मसल्ला है, नमाज पढ़िए, ये आपका पर्दा है, ये हिजाब है। गैर मुस्लिम आके बताएंगे, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। तो देखिए, दीन हमारे अपने दिल की कैफियत का नाम है कि हम कैसा चाहते हैं दुनिया में। अभी होता क्या है कि जो गाफिल हुए तो किसी जरूरत से घर वाले गए किसी काम से बाहर, तो शिकायत हुई कि देखो मियाँ हमारी तरफ तो देखते नहीं, और बाजार गए तो दूसरी औरतों की तरफ देखते रहते। बच्चों को ले गए, बड़े बच्चों को, तो वालिदैन को शिकायत होगी बच्चे इधर उधर देख रहे हैं, किसी की नज़र काबू में नहीं है। ये किस्सा है बरतानिया का कि एक बहन, उनको पहले हिजाब वगैरह की आदत नहीं थी, तो किसी सहेली ने उनकी एक तस्वीर खींच ली और उस तस्वीर को इंटरनेट पे पोस्ट कर दिया। अब इंटरनेट ऐसी चीज है कि आप कोई चीज पोस्ट कर दो हमेशा के लिए चली गई, आपका काबू नहीं है उसमें। अब उसके बाद उस बहन ने तौबा कर ली, उन्होंने हिजाब ले लिया और उन्होंने अब निकाब लेना की कोशिश की कि अब और ज्यादा तकवा आ जाए। तो शैतान आ गया कि भाई आपकी तो तस्वीर इंटरनेट पर है और लोग देख रहे हैं, आपको क्या, आप क्यों हिजाब निकाब कर दे। तो भाई शैतान को दफा करना है, कोई गलती हो गई माजी में, लेकिन अब आगे जिंदगी में तकवा लाना है। तो उन्होंने बहन ने भी फिर निकाब ले लिया कि भाई जैसा भी हो जो है, अब हम अल्लाह के रास्ते में हम अपनी जिंदगी बदलते। मेरी नसीहत है तमाम लोगों को, खास तौर से बच्चियों को नसीहत है कि कभी भी अपनी तस्वीर किसी दूसरी खातून या सहेली को नहीं दें, वो तस्वीर गलत इस्तेमाल होगी। ये नहीं समझें कि ये तो औरत है, किसी अपनी तस्वीर किसी को दें, ये यानी असली वाकयात हैं ये आज की दुनिया में। अमारात में एक माँ है और वो जब अपनी बच्चियों को लेकर जाती हैं किसी मुसलमान खवातीन की प्रोग्राम में, महफिल है लेडीज ओनली, मुस्लिम सिस्टर्स ओनली, तो अपनी बच्चियों को दूसरी मुसलमान लड़कियों से हिजाब और निकाब करवाती हैं, अपनी बच्चियों को मुसलमान बहनों के सामने निकाब करवाती हैं कि इन पे पर्दा करो। क्यों? क्योंकि उनमें से बाज लड़कियों की आदत है फोन से तस्वीरें खींचने की, एक मिनट में तस्वीर क्लिक करके आपकी तस्वीर पूरे मर्दों में कहाँ कहाँ भेज देंगी। अपनी बच्चियों को मुसलमान औरतों से निकाब करवाती, इस वजह से इतना फितना बढ़ गया है आजकल। अल्लाह ताला माफ फरमाए। अल्लाह अकबर। नफ्स की मिसाल मुर्दा सांप की तरह है। एक किसान था, लकड़हारा था, जंगल से लकड़ी लाया, लकड़ी के साथ एक मुर्दा सांप भी आ गया, डेड स्नेक। उसने कहा ये सांप क्या करेगा, ले आया घर पर। रात को जो घर में थोड़ी सी हीटिंग हुई, सांप जिंदा हो गया और पहला काम ये किया कि आके उसी लकड़हारे की गर्दन के ऊपर उसको डंक मारने को तैयार। नफ्स की मिसाल ऐसी है कि किसी वक्त भी जिंदा होके डस लेगा, उस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। और फरमाया बुजुर्ग ने, जो तू करता है छुपकर जहां से, कोई देखता है तुझे आसमान से। एक आदमी जिक्र करता हुआ जा रहा था सड़क पर, क्या हुआ, नामहरमों को भी देखता हुआ चला जा रहा है और अफसोस भी कर रहा है, लाहौल वाला कुवत इल्ला बिल्ला, मौलाना ये क्या है, लाहौल वाला कुवत इल्ला बिल्ला। तो मौलाना फरमाते हैं कि इस वक्त का जिक्र ये नहीं है, इस वक्त का जिक्र ये कि दूसरी तरफ देखो और फिर तौबा इस्तग़फार करो, देखो ही मत। हकीमुल उम्मत को एक शागिर्द ने लिखा या पूछा कि हजरत ये खूबसूरत चेहरे हैं और ये ऐसा मालूम होता है कि बहुत खूबसूरत आईने हैं, और इनको देखने से मुझे अल्लाह की मार्फत मालूम होती है कि अल्लाह ने कितनी खूबसूरत मखलूक बनाई है, और आप कहते हैं कि मत देखो। ऐसे ऐसे इश्काल। बुजुर्ग फरमाते हैं कि हाँ ये चेहरे आईने हैं, लेकिन ये आतशी आईने हैं, जो भी उसको देखेगा वो जल जाएगा, उसका ईमान जल के राख हो जाएगा और उसकी सेहत खराब हो जाएगी और उसकी अकल रुखसत हो जाएगी। बुजुर्ग भी समझते हैं कि नौजवानों के दिल में क्या ख्यालात हैं, वो वैसे ही जवाब देते हैं। नफ्स की मिसाल माचिस की तीली का सिरा है, आग उसमें पहले से ही भरी हुई है, जरा सा रगड़ने की देर है और बस आग आ गई। नफ्स की ऐसी मिसाल है। فرمایا کہ جو آدمی گناہ پر قادر ہو لیکن پھر اللہ کے خوف سے رک جائے تو اس لمحے پر جو دعا کرے گا وہ دعا مستجاب ہو جائے گی. گناہ پر قادر تھا لیکن رک گیا اللہ کے خوف سے, اب اس وقت دعا کرو آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. ایک 65 سالہ بوڑھے معلم ایک 60 سال کی بوڑھی خاتون کو پردے کے پیچھے سے پڑھاتے تھے. تو خاتون بوڑھی عورت نے ایک دفعہ کہا کہ حضرت اتنی عمر کے ہیں آپ پردہ اٹھا دیجئے اور دونوں ایک ہی طرف بیٹھ کر پڑھ لیں, اب تو ہم لوگ بوڑھے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ ہم بوڑھے ہیں مگر شریعت محمدی جوان ہے, سنت کی حفاظت ضروری ہے. مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری عمر ان کے بیانات کا خلاصہ اور سب سے زیادہ جو زور دیتے تھے نظروں کی حفاظت پر. اب ان کا کوئی بیان سن لو اور ان کی کوئی کتاب پڑھ لو اس میں یہی مضمون ملے گا کہ بھائی نظروں کی حفاظت کرو. تو انہوں نے فرمایا کہ لوگ جو نامحرم کی خوبصورتی کو دیکھ کے بے چین ہو جاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیوں نہیں سوچے جو اللہ تعالیٰ یہ سارے فیشن اور ڈیزائن بنانے والے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے آخری زمانے تک. جو خالق کائنات ہے, جو فیشنر اور ڈیزائنر ہے, اس کو آپ اپنے دل میں لے آؤ تو یہ سارے فیشن اور سب چہرے آپ کے پاس آپ کو سب مل گیا, پوری دنیا مل گئی. دنیا میں اللہ نے ہر ایک کا چہرہ الگ بنایا, ناک, نقشہ, گول, رنگ کیسا ہو, ڈیزائن کیسا ہو, یہاں پہ چوائس نہیں ہے. جیسا ہو گیا ایک ٹیسٹ ہے, تھوڑی دیر کے لیے ملا ہے. آخرت میں چوائس ہے, جنت میں ہر مومن مومنہ کو ایک بازار میں چوائس دی جائے گی کہ آپ نیا چہرہ بنا لیجئے, سائز کیسا ہو, ڈیزائن کیسا ہو, کلر کیا ہو, ناک نقشہ کیا ہو, آپ اپنا چہرہ خود بنا لیجئے. نہ اس کی کوئی کاسٹ ہے, نہ کوئی سرجری کی ضرورت ہے, نہ تکلیف ہے, نہ اس میں کوئی ٹائم لگے گا. بادشاہ کا, شہزادے شہزادی کا چہرہ بنا لیا, گھر والوں کا بھی دوسرا بنا لیا, آپ چلو ایک لاکھ سال اب آپ کو جیسا پسند ہو آپ رہو, پھر آؤ دوسرا چہرہ بنا لو, ہر ہفتے بدل لو. تو بات یہاں کی نہیں ہو رہی, بات ہو رہی کہ وہاں پر کیا ملے گا اور کیسا ملے گا. اس کے لیے تقویٰ کی زندگی, اس کے لیے دیکھنا کہ صحابیات کا کیا عمل تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات اپنے گھروں میں اگر بیٹھتی تو دروازے کی طرف منہ نہیں کرتی تھیں, دروازے سے ہمیشہ دوسری طرف منہ کر کے بیٹھتی, خدا نہ خواستہ دروازہ کھل گیا تو بے پردگی نہ ہو. ایک صحابی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, جبرائیل علیہ السلام جب آتے وحی لے کے تو مختلف شکلوں میں آیا کرتے تھے. تو کبھی کبھار ایک صحابی دحیا قلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں آ جاتے تھے. اب یہ صحابی اتنے خوبصورت تھے, اتنے خوبصورت تھے کہ یہ جب جانا ہوتا ان کو بازار میں باہر کسی ضرورت سے تو بسا اوقات فتنے سے بچنے کے لیے, لوگوں کو فتنے سے بچانے کے لیے یہ مرد آدمی اپنے چہرے پر نقاب ڈال کے باہر جایا کرتے تھے. صحابی کام. صحابہ ایک زمانے میں اللہ کے راستے میں گئے تو ان سے لڑنے والوں نے, رومیوں نے ان کے راستے میں خوبصورت لڑکیاں سجا کے کھڑی کر دیں کہ کسی طرح سے ان کو بہکا دو. انہوں نے آیت پڑھی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم اور ساری جماعت نظریں نیچی کر کے چلی گئی. کس نے دیکھا ہی, کسی نے دیکھا ہی. ایک اللہ والے تھے, ان کو اللہ کا عشق اور شوق اتنا زیادہ تھا کہ ان کی شادی ہوئی تو رات میں, شادی کی رات ہے, بیوی سے ملاقات ہوگی تو ان کو تہجد کا شوق تھا, انہوں نے کہا پہلے تہجد پڑھ لوں. تو تہجد پڑھنے گئے, اتنا شوق ہوا کہ رات بھر تہجد ہی پڑھتے رہے, بھول گئے کہ آج شادی ہوئی تھی, بھول گئے کہ آج شادی ہوئی تھی. اللہ کا شوق پیدا ہو گیا, آخرت کا شوق پیدا ہو گیا. آج کے زمانے میں بد نظری سے بے حیائی تک کیا مسئلہ ہے آج کے زمانے میں اور کس طرح یہ مسئلہ بڑھتا ہے. ایک چیز ہے فطری کشش رکھی گئی, فطری خوبصورتی رکھی گئی, سجاوٹ کا شوق رکھا گیا, نفس آزاد رہنا چاہتا ہے, پابندی مت لگاؤ. پھر کیا ہے کہ یہ مخلوط اجتماعات بازار میں, سڑکوں پر, پارکوں پر, ہر جگہ, پھر بدنظری جو ہے اس میں کوئی مشقت نہیں ہوتی, آنکھ کھولا اور دیکھ لیا, اس میں کوئی قیمت بھی نہیں لگی, اس میں کچھ خرچہ بھی نہیں دینا پڑا. एक आम गुनाह है और आम तौर से लोगों की तबीयत बाज लोगों की आशिकाना मिजाज होते हैं, जहां नजर पड़ी देखना शुरू कर दी, और शैतान के चेले हर तरफ खड़े हैं, बेफर्दगी की तरफ तवज्जो दिलाते हैं, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, शैतान आके बता रहा है उधर देखो। फिर क्या हुआ कि खाने में बाज जगह हराम अज्जा मिलाए जाते हैं, अगर ख्याल ना करे आदमी तो पलीद गंदे ख्यालात दिमाग में वैसे ही पैदा होते। फिर शहवत जो है वो छुपी हुई चीज है, दिल में होती है, दूसरों को पता ही नहीं चलता, ये एक और मसला हुआ। फिर तस्वीरों का फितना आया जो तमाम जराए इबलाग पर है, कागज हो, साइन बोर्ड हो, टीवी हो, इंटरनेट हो, हर जगह बेहयाई के मनाजिर। अब इस माहौल में जो रहेगा है, बच्चे बच्चियां जो बड़े होंगे बाहर जाएंगे, कितनी उनको ईमान यकीन तकवा की जरूरत है, क्योंकि और इसमें अल्लाह का वली हो जाएगा जो अपने आप को बचा लेगा। लेकिन जो फिसल गया और इससे आगे निकल गया, फिर क्या है, टीवी है और ड्रामे हैं, सिनेमा और फिल्में और बेहयाई के मनाजिर की अमली शक्लें हैं, अल्लाह बचाए, फिर गाने, मौसीकी, फिर उसके बाद लिखी हुई बातें, नावल, मैगजीन, अफसाने, बेहयाई की बातें लिखी हुई। तो नफ्स और शैतान हर तरह से बहकाता है और होता क्या है, फिर वबाल पड़ता है, फिर जिंदगी भर का अफसोस। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। कुरान शरीफ में फरमाया गया, वला तबर्रज न तबर्रुज जाहिलियत उला, जबान जाहिलियत की तरह अपने जेबो जीनत का इजहार मत करो। और हल बताया गया कि हिजाब, हिजाब इताअत है, इफ्फत है, तहारत है, पर्दा है, हया है, गैरत है और तकवा है। इस्लामी माशरे का शियार सादगी और हया, इस्लामी माशरे की खसूसियत सादगी और हया। बाज जगहों पे साइन बोर्ड लगे हुए होते हैं कि शर्म मत कीजिए, शर्म व हया बीमारी है, ऐसी बात लिखी हुई। और इस्लाम में कहा जाता है कि इज़ा लम तस्तहयी फस्ना मा शिता, ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, जब तुम हया ना करो तो जो चाहे करो, जब हया ही नहीं रही तो जो बुराई हो सब बराबर है। आज के ज़माने में शैतान की कोशिश है कि घरों में झगड़े हो, खाने में हराम चीज़ें मिलाई जाएं ताकि तकवा ख़त्म हो जाए, और बेपर्दा बाहर निकाला जाए ताकि पाकीज़गी माशरे से ख़त्म हो जाए। और इस्लाम दीन क्या सिखाता है, इन्नल हया मिनल ईमान, मुत्तफ़क़ुन अलैह, बेशक हया ईमान का हिस्सा है। अल हया ला याती इल्ला बिखैर, मुत्तफ़क़ुन अलैह, हया सरासर हया खैर के अलावा और कुछ नहीं लाती। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल हया व कुल्लुहु खैर, हया सरासर खैर है। अल्लाह आगे फरमाया, अल हया शुअबतुम मिनल ईमान, हया ईमान की एक अहम शाख है। फिर फरमाया, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशद हयाअम मिनल अज़राई फी खिद्रिहा, एक कंवारी लड़की अपने पर्दे में जितनी शर्मीली होती है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कंवारी लड़की से भी ज्यादा शर्म हया वाले थे, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंवारी लड़की से भी ज्यादा शर्मीले थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अदबुल मुफरद मुसन्निफ इब्ने शैबा, उसमें यह मजमून मिलेगा, हया और ईमान एक दूसरे के साथी हैं, जब एक चीज निकल जाए दूसरी भी चली जाती। शोबल ईमान कंजुल उम्माल, यह हदीस की किताबें, इसमें मिलेगा कि पहली चीज जो दुनिया से उठ जाएगी वो हया और अमानतदारी है, लिहाजा इन सिफात को अल्लाह से मांगिए, इन सिफात को अल्लाह से मांगिए। तो उलमा फरमाते हैं कि देखो, हया करीब करीब सारे गुनाहों से मुहाफजत करती है, बचाती है, और ये हर मुसलमान का असली जेवर है, और ये एक हिफाजती जिल्द है, प्रोटेक्टिव स्किन, और ये आब हयात है, और ये दिल और दिमाग का तकवा है, और जिसको ये मिल गया उसको सारे गुनाहों से वो बच जाता है। सहाबियात का क्या अमल था, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, उम्मे खल्लाद आई, उनका बेटा शहीद हो गया था अल्लाह के रास्ते में, जब वो आई पूरे पर्दे और निकाब में आई, तो लोगों ने कहा कि आपका बेटा शहीद हो गया, इतना गम का मौका है और आप इतने पर्दे का एहतमाम करती हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे के खोने पर गमगीन हूँ, लेकिन अपनी हया को खोकर और गमगीन नहीं होना चाहती, पर्दा तो हर वक्त करना है। सहाबा की मजलिस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि बताओ औरत के लिए सबसे अच्छी बात क्या है। अली रदी अल्लाह अन्हु घर गए और फातिमा रदी अल्लाह अन्हा से पूछा। उन्होंने फरमाया कि औरत के लिए सबसे अच्छी चीज है कि ना वो किसी गैर मर्द को देखें और ना गैर मर्द उनको देखें। तो फरमाया कि फातिमा मेरा ही एक टुकड़ा है, फातिमा मेरा ही एक जुजू है। हजरत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा जन्नत की तमाम खवातीन की सरदार और पर्दे का इतना एहतमाम फरमाती थी। आपका जनाजा रात में उठाया गया और आपके जनाजे पर एक इजाफी चादर, एक एक्स्ट्रा एक खास तौर से जनाजा बनाया गया कि औरतों का जनाजा इस तरह ले जाया जाता। पूरी दुनिया में मुसलमान खतीब इमाम साहिबान जुमे को खुतबा पढ़ते हैं फातिमतो सैयदतो निसाए अहलिल जन्ना, इतनी फजीलत हुई पर्दा करने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा दो उम्महातुल मोमिनीन बैठी थीं, उम्मे सलमा रदी अल्लाह अन्हा और मैमूना रदी अल्लाह अन्हा, यह अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। एक नाबीना सहाबी आए इब्ने उम्मे मकतूम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई इनसे पर्दा कर लो। तो उन्होंने कहा ये तो नाबीना है, देख नहीं सकते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या तुम दोनों भी नाबीना हो, तुम तो देख रही हो इसलिए पर्दा करो। ऐसा सफर पर जा रहे थे, उम्मुल मोमिनीन सफिया रदी अल्लाह अन्हा अपने ऊंट से गिर गईं, इमरजेंसी। अब खादिमीन जो है उनको और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ हैं, मदद कर दी है। तो जो खादिम थे उन्होंने उस हाल में पहले अपना पर्दा किया, अपने ऊपर एक चादर डाल ली सर से पैर तक कि कुछ नजर ना आए। फिर वो गए और उम्मुल मोमिनीन के ऊपर एक और चादर डाल दी कि अब वो इत्मीनान से खड़े होके तैयार होके ऊंट पर दोबारा सवार हो जाए। इमरजेंसी में पर्दे का एहतमाम, ये जो बातें बताई जा रही हैं ये इस वजह से इस्लाम इतना पाकीजगी का सबक देता है, किस तरह से सारे फितनों का दरवाजा बंद हो। कुरान शरीफ में आदाब सिखाए गए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसु, ऐ मोमिनो अपने घरों के अलावा किसी घर में मत दाखिल हुआ करो जब तक इजाजत ना ले लो। अब घर में आ गए गैर मर्द और उनको जरूरत पेश आई खवातीन से कोई चीज मांगने की, तो अगला अदब सिखाया, वइज़ा सअलतुमुहुन्ना फसअलूहुन्ना मिन वराए हिजाब ज़ालिकुम अतहरु लिक़ुलूबिकुम व क़ुलूबिहिन, जब तुम औरतों से कोई ज़रूरत की चीज़ मांगो तो पर्दे के पीछे से मांगो, इसमें तुम्हारी और उनके दिलों की पाकीज़गी है। फिर ख़वातीन को पर्दे के पीछे से बात करनी पड़ी, कोई ज़रूरत का मौका आ गया। तो अगला हुक्म, फला तखबअना बिल कौल फयतमअ लज़ी फी क़ल्बिही मरदुन व क़ुलना क़ौलन मअरूफा, कि ऐसे मौके पर तुम नज़ाकत के साथ बात मत किया करो, कहीं ऐसा ना हो जिसके दिल में नफसानियत की बीमारी हो वो तुम्हारी लालच में ना पड़ जाए, बात वो कहो जो भलाई वाली हो। उलमा फरमाते हैं कि उस मौके पर गैर महरम से जब कोई बात कहनी हो तो फीके अंदाज में नरम लहजे के बगैर एक ड्राई सी वॉइस मुख्तसर बात कह के खामोश हो जाए। किसी जरूरत से खवातीन को घर से बाहर जाना पड़ा तो हुक्म है, युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन, अपनी चादरें अपने मुंह के ऊपर झुका लिया करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लेके अब तक 14 सदियों तक मुफस्सिरीन, उलमाए कराम, अइम्मा, फुका, मुज्तहिदीन और सहाबा, ताबईन, इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु, इब्ने जरीर, इब्ने सीरीन, इब्ने कसीर, इमाम सुयूती, इमाम कुर्तुबी, अल्लामा इब्ने जौजी और हनफी, शाफई, हम्बली, मालिकी, फोर स्कूल ऑफ थॉट, सब के सब ये बताते हैं कि चेहरे का पर्दा और या निकाब वगैरह ये पर्दे के लिए ज़रूरी है। सब के सब इसकी तशरीह करते हैं के पर्दे का मतलब निकाब होता है। हत्ता के इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु और इब्ने सीरीन, उन्होंने शागिर्द को चादर मुंह पर लपेट कर बताया कि इस तरह से पर्दा किया जाता है। फिर आगे बताया गया कि अगर औरतें कहीं जा रही हों, वला यबरिबन बि अर्जुलिहिन्न लियुअलम मा युख्फीन मिन ज़ीनतिहिन, के चाहिए कि चलते वक्त अपने पांव जमीन पर जोर से ना मारें जिससे लोगों को उनके छुपे हुए जेवर या ज्वेलरी की आवाज मालूम हो सके। सुभान अल्लाह, उलमा फरमाते हैं कि देखो خواتین کے جیولری کی آواز بھی غیر مردوں کو متوجہ کر سکتی ہے، اس لیے اس کو بھی خوبصورتی میں داخل کیا گیا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر کوئی رنگ برنگے لال پیلے اور پنک کلر کے برقعے پہن کر نکلیں گی تو مرد نہیں دیکھیں گے کیا، جبکہ جیولری کی آواز کو بھی خوبصورتی میں بتایا جا رہا ہے؟ اس لیے ہمارے بڑے بزرگان ہمیشہ انہوں نے کالے رنگ کے حجاب کے لیے نصیحت فرمائی۔ یہاں ایک نو مسلمہ خاتون، ان کو حجاب کی ضرورت تھی، تو کسی نے ان کو ایک حجاب بھیجوایا، میرون کلر کا، پنک کلر کا۔ تو انہوں نے اصرار کر کے دوبارہ منگوایا کہ نہیں جی، مجھے کالا حجاب چاہیے۔ ابھی سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی، اللہ اکبر بھی کہنا نہیں آتا، لیکن اتنا معلوم ہے اسلام یہ ہر فطرت عورت کی ہے کہ جتنا زیادہ پردہ ہو سکے اتنا اچھا ہے، کالے رنگ کا حجاب منگوایا۔ دیکھیے آیات حجاب کے مخاطبین جو ہیں وہ امہات المومنین اور صحابہ کرام، ان کا تقویٰ اتنا زبردست اور اللہ پاک ان سے راضی تھے، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، پھر بھی اتنے سخت احکام اس زمانے میں تھے، تو آج کے زمانے میں تو کتنی زیادہ ضرورت ہوگی، جبکہ اتنی بے پردگی ہے۔ اور اس میں صرف ہم اپنے ماحول کو اور خبروں کو نہیں دیکھتے کہ اگر کوئی بچی بڑی ہوئی اور انہوں نے صرف سر ڈھک لیا تو وہ سمجھیں کہ ہم بہت پہنچے ہوئے ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں صحابیات کے عمل کو دیکھنا، صحابیات کے دین کے معاملے میں اوپر والوں کے عمل کو دیکھنا، کتاب اور سنت سے پورا پورا عمل لینا، اور اللہ پاک سے کمی کوتاہی پہ استغفار کرتے رہنا، کمی کوتاہی پہ استغفار کرتے رہنا۔ حدیث شریف میں آیا کہ دنیا وہ تو مومن کا جیل خانہ ہے۔ اب جیل خانے میں آدمی اپنی پسند کا لباس تو نہیں رکھ سکتا، جیسا یونیفارم ہوگا ویسا پہننا پڑے گا۔ تو جو آدمی دنیا کی چیزوں پر للچاتا ہے، آسمان میں ذلیل سمجھا جاتا ہے۔ ایک بندے کی چاہت ہے، ایک اللہ کی چاہت ہے۔ اللہ کی چاہت خوشی سے جو لے لے گا تو اس کو درجات بھی ملیں گے اور اللہ کی محبت بھی ملے گی۔ ایک بزرگ نے ایک نوکر خریدا، غلام، گھر لے گئے۔ نوکر سے پوچھا کہ میاں کیا کھانا کھاؤ گے؟ اس نے کہا آپ نے مجھے خرید لیا ہے، آپ جو کھلائیں گے ہم وہی کھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ارے میاں کیا نام ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا آپ نے مجھے خرید لیا، آپ جو نام رکھو وہی میرا نام ہے۔ انہوں نے کہا ارے رہو گے کہاں، کوئی کمرہ لے لو۔ اس نے کہا حضرت جس کونے میں بٹھا دو وہی میرا گھر ہے، وہاں بیٹھیں گے۔ تو انہوں نے کہا بھائی کپڑے کیسے پہنو گے؟ انہوں نے کہا میں آپ نے مجھے خرید لیا ہے، جیسا کپڑا آپ پسند کریں گے وہی ہم پہنیں گے۔ محبت میں جو آپ کی پسند وہی ہماری پسند۔ تو شیخ نے کہا کہ تم مجھے ادب سکھا رہے ہو کہ میں اللہ پاک کے سامنے کس طرح سے رہوں، مجھے اللہ کے سامنے یہ سب کرنا چاہیے، اس لیے جاؤ تم آزاد ہو۔ اس کو نوکر کو آزاد کر کے بھیج دیا کہ تو تو کوئی بزرگ معلوم ہوتا ہے۔ جہاں پر پردے کا رواج نہ ہو اور پردہ کوئی کرنا چاہے تو شیطان آ جاتا ہے۔ شیطان ان کے گناہ لے کے آتا ہے کہ اجی ابھی آپ کی نماز کمزور ہے، ابھی تو آپ دین میں پورے پورے نہیں آئے، تو ابھی پردہ کیا کرنا۔ شیطان تاویلیں لاتا ہے کہ ابھی پردہ وغیرہ کیا کرنا۔ تو شیطان کو کہنا چاہیے اس وقت کہ ٹھیک ہے شیطان، اور شعبہ زندگی میں ابھی کچھ کمی کوتاہی ہے، ہم سیکھ رہے ہیں، لیکن کہیں سے تو شروع کرنا ہے، اس لیے چلو ہم پردے سے شروع کریں گے اور انشاءاللہ باقی گناہ بھی چھوڑ جائیں گے۔ شیطان کو بھگا دیا جائے۔ ہنسے جانے سے تم جب تک ڈرو گے زمانہ تم پر ہنستا ہی رہے گا۔ لوگ کیا کہیں گے، زمانہ کیا سوچے گا، زمانہ ہنستا ہی رہے گا۔ پردہ فطرت ہے، ہر عورت کی فطرت ہے۔ ایک جگہ نئے مسلمان بچے بچیاں اسلامی عبادت سیکھنے کے لیے جمع ہوئے، ابھی سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی، ابھی اللہ اکبر کہنا بھی نہیں آتا، لیکن دین کے شوق میں کہیں جمع ہو گئے۔ تو پردہ لگایا گیا بیچ میں، پارٹیشن لگایا گیا، اور بچیوں نے اپنے شوق سے سر پر حجاب لے لیا، اور جس کے پاس نہیں تھا اس نے اپنا سردی کا جو سوٹر والا اسکارف ہوتا ہے اسی کو سر پر لپیٹ لیا کہ بھائی اسلام یہ کہتا ہے تو ہم پہنیں گے۔ ابھی اللہ اکبر کہنا بھی نہیں آتا، لیکن شوق میں حجاب سب سے پہلے آ گیا۔ تو بھائی دنیا کے کسی حصے میں رہتے ہوں، کوئی زبان بولتے ہوں، یہ بھی آدم اور حوا کی بیٹیاں ہیں، یہ بھی جنت میں جانا چاہتی ہیں۔ بہت یہ آج کا مسئلہ اہم ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ نفس کی تربیت کی، بچوں کی تربیت کی، 20 سال پڑھایا، علم دین سکھایا، शैतान आ गया और 20 मिनट में बहका के ले गया। 20 साल का पढ़ाया हुआ 20 मिनट में जाया हो जाता। छोटे बच्चे उनको मालूम नहीं होता, एक बेबी है, जमाने के फितने उसको क्या मालूम। सड़क पर आ गया, दौड़ने लगा, हाईवे है, ट्रक आ रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डोजर आ रहे हैं और बच्चे को बड़ा मजा आ रहा है। ये देखो एक काला बिल्डोजर है, ये पीला है, खिलौने समझ रहा, दौड़ रहा इधर उधर, उसको क्या मालूम। वालदेन को समझाना चाहिए कि देखो बाहर में कितने मसले हैं। एक तोता था, उसको खूब सिखाया, तोते को कहा बोलो अल्लाह, बोलो कलमा, पढ़ो वजीफा, तोता सीख गया, सुबह शाम वजीफा पढ़ रहा। एक दिन पिंजरा खुला रह गया, बिल्ली आके दबोच ली तोते को, अब क्या हुआ, सारा वजीफा भूल गया, वही पुराना टेंटे करने लगा। तो नई नस्ल की ये हालत होगी अगर उनको मुसलसल मेहनत ना की जाए ईमान और तकवा पर, कि देखो जमाना खराब है, इतने हर जगह हैं, गैरों का भरोसा नहीं, शैतान बहकाने पर खड़ा है, अपनी हिफाजत करो और पूरा पर्दा करो, किसी से नरम आवाज में भी मत बोलो और हमेशा अल्लाह की मदद मांग के, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करके अल्लाह से मांगते हुए चलो, एक एक कदम अल्लाह के डर के साथ चला जाए। कुरान शरीफ में देखिए अल्लाह पाक ने मरियम अलैहिस्सलाम के अलावा, मरियम अलैहिस्सलाम उनके अलावा किसी औरत का नाम नहीं लिया। किस तरह से औरतों का जिक्र आया, इमरातुल अजीज, इमरातु नूह, इमरातु लूत, इमरातु फिरौन, इमरातु इमरान, या उख्त हारून, इस तरह से औरतों का जिक्र आया। यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस औरत के घर पर थे उसका भी अल्लाह ने नाम नहीं लिया और अरबी के चार अल्फाज अलग अलग इस्तेमाल किए बजाय नाम लेने के, अल्लती हुवा फी बैतिहा, वो जिसके घर में ये आदमी थे, इशारे से जिक्र फरमाया, नाम लिया ही नहीं। अब यहाँ से अदब सीखिए कि उम्मे फला बिनते फला, औरतों के नाम इस तरह लिए जाते, औरतों के नाम इस तरह लिए जाते। सूरह रहमान में आयत है, हूरुम मकसूरातुन फिल खियाम, हूरें जिनको खीमों में हिफाजत से रखा गया होगा। तफसीर उस्मानी में फरमाते हैं कि देखो ये है औरतों की असल खूबी, घर में है। यूसुफ मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में सूरह कसस में आयत नंबर 25, उसमें बताया गया कि जब शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी उनके पास आई, فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ, तो उन दोनों औरतों में से एक उनके पास शर्म व हया के साथ चलती हुई आई। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जब वो बच्ची आई तो उसने अपने हाथ की आस्तीन के कपड़े से अपने चेहरे को छुपाया हुआ, और मूसा अलैहिस्सलाम आगे आगे चले और वो खातून पीछे पीछे चली ताकि मूसा अलैहिस्सलाम उनको देख ना पाए, मूसा अलैहिस्सलाम उनको देख ना पाए। तो जब जिंदगी में तकवा आता है तो फिर हमारी बहनें मस्तूरात अपना एक टूटा हुआ बाल या नाखून भी ऐसी जगह नहीं डालती जहाँ पे गैर मर्द उसको देख सकें, और अपने घर में कोई रंग बिरंग के सैंडल हो तो उनको भी छुपा लेते हैं कि गैर महरम उसको नहीं देख सके, और कोई ईमेल लिखनी हो तो अपने नाम को भी वो मुखफ्फफ करके दूसरा नाम इस्तेमाल कर लेते हैं, उम्मे फला, ताकि गैरों को नाम भी मालूम ना हो। मुद्दतों रहे साल हर साल, लेकिन पड़ोस की बहनों के किसी के घर का नाम मालूम नहीं होना, ये है इस्लामी अदब कि आप इस दीन पर कायम रहो, अल्लाह पाक सब कौमों को तस्खीर कर देंगे। एक नाबीना रात के वक्त पानी लाने गया, एक हाथ में लैंप, एक हाथ में घड़ा या सर पर घड़ा लेकर, हाथ में लाइट लेके जा रहा है, नाबीना आदमी। लोगों ने कहा हजरत आपको आंखें ही नहीं है, आपके लिए क्या फर्क पड़ता है लाइट हो के ना हो, आप लाइट लेके क्यों जा रहे। नाबीना ने कहा कि बेटो मसला ये है कि अंधेरे में जब आंखें वाले भी चलते हैं तो उनको भी नजर नहीं आता, इसलिए क्या होगा कि कोई मुझसे टकराएगा, और जब टकराया तो घड़ा तो मेरा टूटेगा और सारा नुकसान तो मेरा होगा, इसलिए लाइट लेके चल रहा हूँ, हटो बचो हटो बचो। तो अपनी बच्चियों को ये सबक सिखाएं कि अगर हम बाहर बेपर्दा चले गए और कभी कोई मसला पेश आया तो उसमें 100% नुकसान खुदा ना खास्ता हमेशा औरत की साइड पे होता है, मर्दों का कोई मसला ही नहीं होता। जब भी कोई मसला होगा औरतों को ही मसला होगा, इसलिए पर्दे की पाबंदी जरूरी है।
गाड़ी चला रहे हैं सड़क पर, क्या होता है कि हर एक गाड़ी दूसरी जो करीब आ जाए, चाहे दाएं हो बाएं हो आगे हो पीछे हो, अगर कोई कार आपकी कार के करीब आ जाए तो आप क्या करते हैं, फौरन कोई एहतियात साइड लेते हैं, क्योंकि अगर टक्कर हो गई तो नुकसान तो आपका ही होगा। तो बाहर के फितनों में इस तरह से ही रहना, हमेशा बच बच कर चलना, हमेशा बच बच कर चलना। बात फैमिलियां हैं, अच्छा काम करते हैं कि अगर फैमिली को लेकर गए गाड़ी में तो अपने गाड़ी में शीशे भी वो डार्क करवा लेते हैं जहां तक गुंजाइश हो कानून में, ताकि किसी चौराहे में किसी लाइट में अपने बच्चियों पर घर वालों पर किसी की नजर ना पड़े। तो जब तकवा आएगा तो फूंक फूंक कर ये एक एक चीज आती चली जाएगी, ना उसमें कोई खर्च होता है ना कोई मसला है, बस सोचने की बात है, जरा सी सोचने की बात। उस्वाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअल्लिफ हजरत डॉक्टर अब्दुल हई आरिफ बिल्ला फरमाते थे कि मुद्दतों मैंने इस बात की मश्क की है कि औरत हो या मर्द, किसी को नजर उठा के देखना ही नहीं, मालूम ही नहीं करना कि ये मर्द है कि औरत है, देखो ही नहीं। तो उन्होंने ये मश्क की एक स्टेप और आगे। मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह जब जाते हैं ट्रेन में, तो अगली ट्रेन आती तो खिड़की से सर निकाल कर देखते भी नहीं, मालूम नहीं किस पे नजर पड़ जाए, देखते ही नहीं कि कौन है क्या है। यहाँ हमारे एक नक्शबंदी शेख हैं, उन्होंने अपने स्टूडेंट को शागिर्द को नसीहत की कि बेटा किसी नामहरम की आंखों में नहीं देखना, अगर तुमने देख लिया तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारा काम हो गया, यू आर डन, समझे, अब मसले शुरू हो गए। तो कभी किसी नामहरम की आंखों में नहीं देखना। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के एक शागिर्द, एक दफा क्या हुआ कि खड़े हुए और एक गैर मुस्लिम एक खूबसूरत लड़के को घूरने लगे और कहने लगे या शेख इतना खूबसूरत चेहरा और ये जहन्नम में जाएगा, शैतान बेकार है, वही बैठ के गौर कर रहे हैं कि इतना खूबसूरत आदमी जहन्नम में जाएगा। तो शेख ने कहा क्या कर रहे हो, नजर हटाओ। तो उन्होंने कहा कि शेख मैं तो कोई बुरी नीयत से तो नहीं देख रहा था, एक्सक्यूज कर लो, लेकिन इतने से देखने का वबाल ये हुआ कि जितना कुरान याद किया था सारा भूल गया, जितना कुरान याद किया था सारा भूल गया इस बदनजरी की वजह से। एक मुअज्जिन था, 25 साल तक अजान देता रहा मस्जिद में, अल्लाहु अकबर लोगों को नमाज को बुलाता रहा चौथाई सदी। एक दिन जो अजान देने को चढ़े सीढ़ियों पर तो पड़ोस की एक लड़की पर नजर पड़ गई। अब सारा दीन भूल भाल के वहां पहुंच गए कि मुझे इससे शादी करना। उन लोगों ने कहा कि हम तो मुसलमान ही नहीं है, अगर तुमको शादी करनी हो तो तुम इस्लाम छोड़ के आ जाओ। मुअज्जिन साहब राजी हो गए, इस्लाम छोड़ दिए। और जब शादी मुलाकात से पहले उनको कहीं सीढ़ियां चढ़ रहे थे या पहाड़ पर चढ़ रहे थे, मुख्तलिफ रवायतें हैं, वहां से फिसले और फिसल कर नीचे गिर के मर गए। दुनिया भी गई वो भी ना मिला और आखिरत भी गई, खसरत दुनिया वल आखिरा, ये होता है बदनजरी का नुकसान। हमारी नसीहत है हर एक अपने दिल पर लिख लें, हमारे जज्बात और एहसासात और ख्वाहिशात ये हमेशा अकल के ताबे रहेंगे, प्रिंसिपल बनाया लिख लिया, ताकि नफ्स मुझे कभी ना बहका सके, और हमारी अकल हमेशा इस्लाम और शरीयत के ताबे रहेगी ताकि शैतान आके कोई झूठी दलील से ना बहका सके, और जिंदगी के उन मामलात में नाजुक मामलात में जिसमें आदमी अपने वालदैन से भी या घर वालों से भी कहते हुए शर्माता है, किसी बुजुर्ग अल्लाह वाले से मसला पूछ ले तो के आदमी शैतान के शर से बच जाए। ये तीन नसीहतें जरूर याद रखिए। अल्लाह पाक ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा कि जाओ जन्नत और जहन्नम देख कर आओ। जन्नत को देख के बोले कि या अल्लाह जो भी सुनेगा जन्नत का वो उसमें जाना चाहेगा। तो अल्लाह ने जन्नत को उन बातों से घेर दिया जो नफ्स पर नागवार हैं। फिर कहा कि अब जाके देखो। तो जिब्राइल बोले कि अल्लाह मुझे डर है कि अब कोई भी नहीं जा सकेगा। और जहन्नम बनाई तो जिब्राइल देखो जाके, उन्होंने जाके देखा कि या अल्लाह इसमें तो कोई भी नहीं जाना चाहता। अबू दाऊद में इसकी तफसील से रवायत है। तो अल्लाह ने जहन्नम को ख्वाहिशात और शहवात से ढांप दिया। फिर जिब्राइल जाके देखे, उन्होंने कहा अब तो मुझे डर है कि कोई भी नहीं बच सकेगा। जहन्नम के एक किनारे से एक पत्थर गिराया जाए तो 70 साल तक नीचे गिरता रहेगा, इतनी बड़ी जगह है, और वहां की आग दुनिया की आग से 70 गुना तेज है, اور ایک قطرہ اگر جہنم کا زمین پر گر جائے تو کوئی فروٹ اور کوئی دانہ نہیں اگے، ساری زمین خراب ہو جائے، پہاڑ اگر وہاں ڈال دیے جائیں تو گل کے بہہ جائیں، ایسی بری جگہ ہے، اللہ بچائے۔ آخرت میں پوچھا جائے گا کہ میاں دنیا میں قبر میں کتنے دن رہے، دنیا میں کتنے دن رہے، کوئی کہے گا 10 دن رہے، کوئی کہے گا 1 دن رہے، کوئی کہے گا 1 صبح اور 1 شام کو رہے۔ جہنم والوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے دنیا کا کوئی آرام اور عیش تم کو یاد ہے؟ بولیں گے نہیں یا اللہ، میں نے دنیا میں کوئی عیش دیکھا ہی نہیں۔ اور جنتی آدمی سے پوچھا جائے گا کہ میاں تم کو دنیا کی کوئی تکلیف یاد ہے؟ وہ کہے گا کہ نہیں یا اللہ، میں دنیا میں کوئی تکلیف مجھ کو پہنچی نہیں۔ تو بات ہے کہ یہاں کیسے رہے نہیں، وہاں کیسے رہے، یہ دیکھنا ہے، اللہ کا عشق ہو جائے۔ ایک بزرگ نے دیکھا کہ ایک معذور آدمی ہینڈی کیپڈ زمین پر گھسٹتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں کعبہ شریف کی طرف جا رہا ہوں، مکہ مکرمہ۔ زمین میں کرالنگ گھسٹتا ہوا چلا جا رہا ہے، ہاتھ پیر نہیں ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں سمرقند سے آ رہا ہوں، سینٹرل ایشیا سے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی کب سے چل رہے ہو اس طرح گھسٹتے گھسٹتے زمین پر؟ اس آدمی نے کہا 10 سال سے چل رہا ہوں، اللہ کا عشق، 10 سال سے چل رہا ہوں کعبہ شریف کی طرف، گھسٹتا ہوا زمین میں چلا جا رہا ہے۔ پھر اس نے کہا تم تعجب کرتے ہو، میرا مالک مجھ کو اٹھائے لیے جا رہا ہے۔ اتنا شوق ہو گیا اس کو، لذت آ گئی کہ میرا مالک مجھے اٹھائے لیے چلا جا رہا ہے، وہ ڈیزرٹ میں اور جنگلوں میں اور کانٹوں میں گھسٹتا ہوا کعبہ شریف کی طرف چلا جا رہا ہے۔ حج کا منظر دیکھ لیجئے، گرمی ہے، حاجی صاحبان تھکے ہوئے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، بدبو میں ہیں، 80 درجے ٹمپریچر ہے، 80 ڈگریز، لیکن خوش ہیں اللہ کے شوق میں۔ اور انہی میں ہزاروں مومنات پردے والی سر سے پیر تک سیاہ جلباب اور نقاب کے ساتھ، جو حج کا ایک علیحدہ جالیدار نقاب ملتا ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ مشقت انہی کو ہوتی ہے اتنی گرمی میں کھڑے، اور لبیک اللہم لبیک۔ تو یہ ہے شان مومنین کی، لا یخافون لومت لائم، کہ ان کو کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ زمانہ کیا کہے گا؟ ہنسے جانے سے تم جب تک ڈرو گے زمانہ تم پر ہنستا ہی رہے گا۔ آج کے زمانے میں اربوں کی انڈسٹری ہوتی ہے چہرے کے ایک ایک حصے کو سجانے کے لیے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ باہر گئے تو بد نظری کی وجہ سے لوگوں کی نظریں پڑیں، شیطان آ گئے، برے خیالات پیدا ہوئے، اور جتنے نامحرموں نے دیکھا ان سب کو گناہ ہوا اور دکھانے والے کو گناہ ہوا، اور شیطان پیچھے لگ گیا، وسوسے پیدا ہوئی، اور زندگی میں پریشانی اور ڈپریشن آ گیا، اور پیسے الگ خرچ ہوئے۔ اور اس کے مقابلے میں کسی نے ایک چھوٹا سا چند روپیوں کا حجاب نقاب کر لیا، سارے مسئلے حل ہو گئے۔ اور کوئی بہن یا بھائی رات کو اٹھے، تہجد کے لیے قیام اللیل، صلاۃ التسبیح پڑھی، لمبا سجدہ کیا، تو چہرہ ویسے ہی نورانی ہو گیا بغیر کوئی چیز لگائے، اور دنیا آخرت بھی مل گئی، دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی، دنیا بھی مل گئی، اور اللہ کی خوشی بھی مل گئی، اللہ ہو۔ انگلینڈ میں ایک خاتون مسلمان ہوئی، انہوں نے پردہ سیکھنا شروع کیا، تو ان کا سوال تھا کہ میری اماں اور میری بہن غیر مسلم ہیں، مجھے ان سے کتنا پردہ کرنا؟ زندگی بھر جس کے ساتھ رہے گھر میں، سوال ہے کہ یہ مجھے اپنی اماں سے اور اپنی بہن سے کتنا پردہ کرنا ہوگا۔ پھر جب ان کی شادی ہونے لگی تو انہوں نے سوال پوچھا کہ مجھے اپنے شوہر سے کتنا پردہ کرنا، شوہر سے کتنا حجاب کرنا۔ یہ ہوتا ہے نئے مسلمانوں کی شان، ان کی حال، یعنی اللہ کے ولی ہو جاتے فورا۔ فتنے کے زمانے میں جو ایک سنت کو زندہ کرے گا 100 شہید کا ثواب ہوگا، پورا دین لے آئے 50 صحابہ کا ثواب ہوگا۔ آپ تقویٰ سے رہیے، سارے کام آسان ہو جائیں گے، دوسروں کے لیے نمونہ، معاشرے میں دعوت۔ اس لیے ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے درخواست ہے کہ جب بھی باہر گئے حجاب شرعی، برقع، عبایا، جلباب، نقاب، پورا اہتمام کیا۔ آپ کو دیکھ کر دوسری بہنیں پردہ کریں گی، دعوت کا ذریعہ ہوگا۔ یہ ایسٹ کوسٹ کا واقعہ تھا کہ ہمارے بزرگ تھے کرنل صاحب، وہ ایک محفل میں چلے گئے جہاں گانا بجانا ہو رہا تھا، تاکہ دعوت دینی شروع کی، انہوں نے لوگوں کو سمجھایا ایمان، آخرت۔ تو وہاں پر جو گانا بجانا ہو رہا تھا وہ عورت بھی مسلمان ہو گئی، اور اس نے اپنا سارا پیشہ اور بزنس بدل لیا، उसको रातों रात हजारों डॉलर मिला करते थे। वो छोड़कर उसने मामूली काम काज शुरू कर लिया, कोई अपने मुलाजमत कर ली। तो उसके थोड़े दिन के बाद उन्होंने शेख को फोन किया कि मुझे मसला पूछना है, हमने अपनी जिंदगी तो बदल ली, इस्लाम भी ले आए, पर्दा भी कर लिया, लेकिन एक मसला पेश आ गया। क्या मसला पेश आ गया? उन्होंने कहा कि हम बस में जा रहे थे और डंडा पकड़कर हम खड़े हुए थे, तो अचानक जब बस रुकी तो थोड़ा सा बुरके का हिस्सा हमारे हाथ की कलाई के पास से जरा सा हट गया, तो हम उसके लिए जहन्नम में तो नहीं जाएंगे, हम उसके लिए जहन्नम में तो नहीं जाएंगे। इतना ईमान और यकीन आ गया कि अब ये मसला पूछा जा रहा है कि बताओ हम कहीं जहन्नम में तो नहीं डाले जाएंगे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनका किस्सा बाज लोगों को शायद मालूम हो कि देखो किस घर से शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसे लोग पैदा होते हैं। उनके अब्बा नौजवानी में इबादत कर रहे थे, उनको भूख लगी तो दरिया में एक सेब आ रहा था, तो अबू साले नाम था उनका, उन्होंने सेब उठा के खा लिया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि मालूम नहीं, मैंने इजाजत तो ली नहीं, किसका सेब था। ढूंढते ढूंढते चलते चलते एक बाग में पहुंचे और बाग के मालिक से कहा, भैया माफ कर दो, मैंने बगैर इजाजत तुम्हारा सेब खा लिया। वो भी शेख थे अपने वक्त के, वलीउल्लाह सैयद अब्दुल्ला उनका नाम था। उन्होंने कहा ऐसा माफ नहीं करूंगा। उन्होंने कहा लड़का बहुत होशियार और अच्छा मालूम होता है, इसको रख लिया जाए। उन्होंने कहा माफ नहीं करूंगा जब तक 10 साल यहाँ रहो मेरे पास और बाग की खिदमत करो, फिर माफ करूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, मुझे तो माफी चाहिए। 10 साल खिदमत की। शेख ने कहा अभी भी माफ नहीं करूंगा, 2 साल और तरबियत में, इस्लाम में, तज़किया नफ्स में कुछ और टाइम चाहिए था। 12 साल खिदमत की शेख की। कहा कि आप माफ कर दीजिए। शेख ने कहा एक रेख दरखास्त और है, ये कर दो तो माफ कर दूंगा। क्या है? कहने लगे मेरी एक बेटी है जो आंखों से नाबीना है, पैर से लंगड़ी है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, गूंगी है, बहरी है और हर तरह के डिफेक्ट है उसमें। अगर तुम उससे शादी कर लो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। अब ये इनको और क्या चाहिए? उन्होंने कहा मुझे तो माफी करानी है, मैं तो जरूर तैयार हो गए। निकाह हुआ। जब शादी के बाद वो पहुंचे अपनी दुल्हन के पास तो देखा कि बहुत कोई खूबसूरत खातून है, उनकी आंखें भी हैं, हाथ पैर भी सलामत हैं। तो वो समझे मैं किसी गलत जगह आ गया, वो भाग के वापस गए शेख के पास। शेख ने समझाया नहीं बेटा, आप यही आपकी दुल्हन है, बात ये है कि ये कभी इन्होंने जिंदगी में कोई दीन के खिलाफ कोई काम किया ही नहीं, ये कभी घर से बाहर गए ही नहीं और इन्होंने जिंदगी भर अपनी आंखों से किसी गैर महरम को नहीं देखा। तो ये था तकवा अब्बा का और तकवा अम्मा का और उन घर में पैदा हुए शेख अब्दुल कादिर जिलानी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इस घर में पैदा हुए। जब उनके वाज हुआ करते थे, मजलिस में 20-20 हजार का मजमा बैठा करता था और बहुत सारे लोग आके तौबा किया करते और कितने ही लोग मुसलमान हो जाते। 5 हजार से ज्यादा लोग उनके हाथ पर मुसलमान हुए और 1 लाख से ज्यादा मुजरिमों ने आकर उनके हाथ पर तौबा की। भाई जिस घर में तकवा होगा उस घर से ऐसे बच्चे निकलेंगे। जन्नत में जब मोमिनात को जन्नत का दुपट्टा दिया जाएगा, उनका हिजाब जन्नत में, वो इतना कीमती कि पूरी दुनिया और उसमें जो कुछ है उससे ज्यादा कीमती होगा। अगर एक जन्नती औरत दुनिया की तरफ झांक भी ले तो जमीन व आसमान रोशन हो जाएं। उनकी खसूसियत बयान की गई सूरह रहमान में, फीहिन्न कासिरातु तर्फ, नीची निगाह वालियां हैं, नीची निगाह वालियां हैं, नजरों की हिफाजत करने वाली। एक आदमी को दुनिया में आंखें नहीं थीं लेकिन ईमान वाला था, अल्लाह पाक जन्नत में ऐसी आंखें अता फरमाएंगे कि जहां चाहो देख लो। तो किस जन्नत में आप जाना चाहते हैं? जन्नतुल खुल्द, जन्नत नईम, जन्नतुल मावा, दारुस्सलाम, जन्नत आदन, जन्नतुल फिरदौस। और जन्नत का कौन सा महल चाहिए? सोने के महल अलग हैं, चांदी के अलग हैं और डायमंड के महल अलग हैं। अल्लाह हु अकबर, डायमंड के महल अलग हैं। जन्नत में 100 दर्जात हैं, हर दर्जे के दरमियान 100 बरस का फासला और इतना फासला हर दर्जे में जितना आसमान और जमीन के दरमियान फासला। और वहां पर खुशबू की बारिश होगी कि उठिए और करामात और इनामात की तरफ जाइए। ऐसी खूबसूरत चीजें न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना, न किसी के दिल में ख्याल भी आया। जैसी शक्ल और तस्वीर पसंद हो आपकी शक्ल वैसी ही बन जाएगी। हजारों बरस की मुसाफत में बाग और नेमतें और घर वाले और खादिम और महल्लात, कायनात का एक एक जर्रा पीछे रह जाएगा और इंसान का हर अमल और हर बोल आखरत में दर्ज हो जाएगा। वहां पर दूध और शहद की नहरें होंगी, नूर के मिंबर होंगे, फल फूल चश्मे आलीशान शीशे आईने, और न सफाई झाड़ पोंछ, न चूल्हा, न धुआं, न बदबू। हमेशा हमेशा जवान, हमेशा खुश और हमेशा सेहतमंद। और मोमिनात पर्दे में रहने वाली अपने शौहरों से पहले जन्नत में दाखिल होंगी और शौहर को आदम अलैहि सलाम का कद और यूसुफ अलैहि सलाम की तरह की जवानी दे दी जाएगी। वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्ली बाब, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उकबद्दार। फरिश्ते हर दरवाजे से आएंगे कि तुम पर सलामती हो, तुमने दुनिया में सबर से काम लिया था और तुम्हारे असली वतन में तुम्हारा बेहतरीन अंजाम है। जन्नत की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह पाक का दीदार है। वुजूहुन यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, बहुत से चेहरे उस दिन सरसब्ज और शादाब होंगे, अपने रब की तरफ देखते होंगे। बाज लोगों को अल्लाह का दीदार हफ्ते में एक दफा होगा, बाज लोगों को दिन में दो दफा होगा सुबह शाम, और बाज लोग इतने तकवा वाले कि उनको अल्लाह पाक का दीदार जब चाहो अल्लाह को देख लो, जब चाहो अल्लाह को देख लो, ये है असल कामयाबी। उस वक्त के लिए अपनी निगाहों को पाकीज़ा रखिए और कोई कमी कोताही हो गई ज़िंदगी में तो अल्लाह पाक से तौबा कर लें। तौबा का दरवाज़ा हर वक्त खुला है और पहाड़ों के बराबर गुनाह अल्लाह की रहमत के मुकाबले में कुछ वज़न नहीं रखते। सुबह के भटके हुए शाम को आ जाएं और रात के नाफरमान सुबह को आ जाएं, अल्लाह के दरबार में हैं, अल्लाह पाक हमारी भी सुनते हैं। तौबा, इस्तिग़फ़ार, आजजी, मिस्कीनी, सब की सब पूरी जमात मिलके दुआ करें अपने लिए, पूरी उम्मत के लिए और सबके घरों की पाकीज़गी के लिए, और अल्लाह पाक नेकी और तकवा का माहौल हर एक को अता फरमा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, या रहमान, या करीम, या ज़ल जलाल वल इकराम, या हय्यु या क़य्यूम, ऐ अल्लाह पूरी उम्मत की तमाम मस्तूरात बेटियों, माँ और बहनों की हिफाजत फरमाइए। ऐ अल्लाह सबको शैतान और नफ्स से बचा दीजिए। ऐ अल्लाह गैर मर्दों की बुरी नज़रों से बचा लीजिए। ऐ अल्लाह बाजार के फितनों से बचा लीजिए। ऐ अल्लाह हर बेहयाई और बेपर्दगी से बचा लीजिए। ऐ अल्लाह हर भूल चूक और कमी और कोताही को माफ़ फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह माजी के तमाम गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह पूरी उम्मत में तकवा, हया, इखलास, यकीन, तौहीद, तवक्कुल, एहसान, इसका माहौल बना दीजिए। ऐ अल्लाह तकब्बुर और हसद और रियाकारी और हिर्स से नजात दीजिए। ऐ अल्लाह तमाम फितनों, आफतों, मुसीबतों से पनाह में रखिए। ऐ अल्लाह दुनिया में जहाँ जहाँ बदमाश और बुरी नीयत रखने वाले लोग मासूम बच्चियों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ऐ अल्लाह उन बच्चियों की इज्जत और इस्मत की हिफाजत फरमाइए। ऐ अल्लाह उनको अकल और तकवा और हया और शर्म अता फरमाइए। ऐ अल्लाह ईमान में कुव्वत अता फरमाइए। तौबा इस्तिग़फ़ार की तौफीक दीजिए। ऐ अल्लाह हिदायत की हवाएं चला दीजिए, शैतानी असरात से पाक फरमा दीजिए। اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعملا صالحا متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك.